राजयोग की प्रयोगशाला, इसमें पांचवा दिन। तो राजयोग से बाबा हमें क्या बनाने आए हैं? राजाओं का राजा, मनुष्य से देवता। तो सबसे बड़ा प्रयोग तो कौन कर रहा है? शिव बाबा इतना बड़ा प्रयोग कर रहा है, और हम तो बस एक कंटेंट है। लेकिन वो कंटेंट भी कैसे होने चाहिए? फ्रेश होने चाहिए। अगर वो पुराने हैं तो प्रयोग में उस में रिजल्ट ठीक नहीं आएगी। तो बाबा भी चुन चुन के लेता है और उनको क्या करता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। तो पहले हम देखेंगे कि राजयोग, योग कितने प्रकार के होते हैं, वो तो हमें पता ही है, रोज हम सुनते हैं। एक तो दुनिया में योगी है, लेकिन वो क्या है? कर्म सन्यासी है। वो घर बार छोड़कर जंगल में जाकर बैठते हैं और कुछ प्रयोग करते हैं। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, और यहाँ पर बाबा हमें राजयोगी बनाने आए हैं, कर्मयोगी बनाते हैं, कि गृहस्थ में रहते हुए ऐसे हमें प्रयोग करने के लिए सिखाते हैं, जो हम क्या बन जाते हैं, काले से गोरा बन जाते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर प्रयोग बाबा हमें सिखाते हैं। तो प्रयोग, हर व्यक्ति एक प्रयोगी है, भले वो कभी स्कूल में भी गया नहीं, या कभी उसने स्कूल की वो लैब देखी नहीं, वो प्रयोगशाला उसने कभी देखी नहीं, तो भी जीवन में हर व्यक्ति अपने आप में कौन है? एक साइंटिस्ट है। जैसे छोटे बच्चों को देखा जाए, उनके पास एक जिज्ञासा होती है और उसके आधार से उनके पास कुछ प्रश्न होते हैं। प्रयोग करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक तो जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए हमारी। और छोटे बच्चों को हम नोटिस करेंगे तो वो अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं, उनके अलग अलग प्रश्न होते हैं। जब उन प्रश्नों के ऊपर सचमुच विचार किया जाए और उसका हल निकाला जाए, तो वो क्या बन जाता है? एक रिसर्च बन जाता है, एक बहुत बड़ा। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, पानी पी लिया, अब खाली ग्लास हाथ में है, तो वो क्या करेंगे? उसको कान में लगाएंगे, उसमें से एक अलग सा साउंड आता है, उनको बड़ी खुशी होती है। वो भाग के मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी मम्मी देखो ना कैसी आवाज आ रही, मेरे ग्लास में से ये आवाज आ रही। हाँ, फिर छोटे छोटे वो प्रयोग करते हैं, जैसे कि माचिस की डिब्बी है तीली की, तो उस खाली डिब्बी का यूज क्या करेंगे, उसमें धागा लगाएंगे, एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा और वो बात करेंगे, उस धागे से आवाज़ कैसे ट्रांसफ़र होता है, उनको बड़ी खुशी होती है ये प्रयोग करके। ये बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ये अनपढ़ माताएं भी कम साइंटिस्ट नहीं होती है, सुबह से लेकर शाम तक किचन में कई प्रकार के प्रयोग करती रहती है, सुबह सुबह चाय का प्रयोग, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हैं कि जिसका सुगंध मात्र से भी पड़ोसी भी पूछने आते हैं कि आज क्या बनाया आपने। तो ये प्रयोगशाला जैसे दूसरों को आकर्षित करती है, वैसे हमारा जीवन राजयोग की प्रयोगशाला बन जाए और हमें लोग पूछने आए कि क्या क्या चल रहा है आजकल, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, कौन सा स्वामान है, कौन सा अभ्यास आप कर रहे हो, चेहरा बड़ा खिला खिला सा लग रहा है, हमें मुख से बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो देखो हर प्रयोग में एक्शन रिएक्शन होते रहते हैं, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और स्कूल की लैब देखने का उसका पहला दिन होता है, जैसे ही अंदर पाँव रखा तो पहले प्रोफेसर टीचर नहीं मिलते हैं, पहले मिलता है वो खूंखार लैब असिस्टेंट, अरे इसको हाथ नहीं लगाना, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारी डायरेक्शंस पहले दिन ही बताई जाती है। लेकिन उस खड़ूस लैब असिस्टेंट को ध्यान में नहीं रखता, उसकी जिज्ञासा वृत्ति अनेक अनेक बातें को देखती है। वहाँ पर वो जो लैब होती है वो तो होती है बड़े जो क्लास में पढ़ने वाले हैं, टेंथ वाले, उनके हिसाब से वो लैब होती है। लेकिन अभी ये पाँचवीं के स्टूडेंट को वो देखने का भाग्य मिला है, तो वहाँ पे पहले तो देखता है ह्यूमन स्केलेटन पूरा के पूरा खड़ा है, मनुष्यों का हड्डियों का ढांचा कांच में पैक किया हुआ। फिर देख के कोई बोलता है देख भूत, रात को सपने में आएगा। फिर और भी वहाँ पे केमिस्ट्री की भी लैब होती है, अलग अलग केमिकल रखे हुए होते हैं, बर्नर रखे होते हैं, स्पिरिट का वो दिया होता है, फिर फिजिक्स का भी होता है, टेस्ट ट्यूब होती है, जार होते हैं, फिर बायोलॉजी का भी क्या होता है, पशु पंछी होते हैं, उसके अंदर भूसा भरा होता है और उनको कांच के अंदर पैक करके रखा होता है। हाँ, ज्योग्राफी का भी लैब होता है। तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, लैब होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, उस लैब में जाते समय हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है, एक वर्क बुक होता है और प्रैक्टिकल बुक होता है, एप्रन तो पहनना होता है जब हमें प्रयोग करना है। जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है तो हमारे साथ क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वो बुक होना चाहिए, उसके ऊपर डेट लिखी जाती है, एक्सपेरिमेंट नंबर और नेम। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसका एम क्या है, हम किस उद्देश्य से उसको करने जा रहे हैं, तो वो पहले लिखा हुआ होता है वहाँ पे। फिर उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, मटेरियल, उसका मटेरियल क्या क्या चाहिए, और वो मटेरियल भी फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा बना के रखा हुआ वहाँ पर, और वहाँ पे बहुत क्लीनलीनेस होता है वहाँ के बर्तन जो है प्रयोग करने के लिए, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर उसकी थ्योरी होती है, उसको हम कहेंगे कि पूरा उसके बारे में थ्योरी पहले बताया जाता है, उसके आगे होता है प्रोसीजर, जिसको हम कहते हैं कि विधि, विधि से सिद्धि, प्रोसीजर, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है। जैसे ब्राह्मण जीवन में हमारे को पता तो है, कोर्स में सारी चीज़ें बता तो दी, अभी हमने इंग्लिश क्लास में भी सुना कि कोई नया व्यक्ति आ जाए, सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, बैच लगा लिया, शॉल भी ले लिया, अमृत वेले भी बाबा के कमरे में भी पहुंच गया, पूरा वो फॉलो कॉपी तो कर रहा है, लेकिन कोई न कुछ ऐसी उससे हरकत हो जाती है, उससे पता पड़ता है कि ये तो बिल्कुल ही नया है। तो प्रोसीजर होनी चाहिए हर बात में, एक सीक्वेंस कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। फिर उसके ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन उसके पैरामीटर्स जो है कि हाँ इतना डाला था फिर इतना ये हुआ इतना, वो सब लिखना होता है और बाद में लास्ट में रिजल्ट आता है, ये प्रयोग या आपका प्रैक्टिकल सक्सेस हुआ और फिर टीचर की साइन लेनी होती है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो पटा लो टीचर को ही, एक बार टीचर खुश हो जाए तो फिर बाकी सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हाँ, तो वो तो हर एक की अपनी अपनी विधि होती है। तो ऐसे ही एक बार फिजिक्स के टीचर मेरे ऊपर बहुत खुश हो गए थे, तो उन्होंने मेरा जर्नल ऐसे ही बिना देखे ही, अरे कमलेश तुम्हारा है, बस साइन करते गए, उन्होंने अंदर देखा भी नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है। तो टीचर को ही पटा लो। तो आज हमारा पहला जो प्रयोग है राजयोग की प्रयोगशाला में, आज मुरली का टाइटल ही है, वो है भोलानाथ। बहुत जल्दी मान जाता है। तो पहला जो हमारा प्रयोग है आज, 7-8 प्रयोग निकाले हैं, उसमें पहला प्रयोग है, एम है आज का भोलानाथ। तो आज भोलानाथ बाबा को हमें पूरे दिन भर में यूज करना है। आज की मुरली जो टाइटल है वो शुरू ही होती है भोलानाथ से, कि उस जिसके सामने आप बैठे हो भोलानाथ है, मोस्ट बिलेवेड है, मोस्ट बिलेवेड है, अति प्रिय है, और उसके आप सम्मुख बैठे हो, इसके साथ आप प्यार रखोगे तो लगन बढ़ती जाएंगी और आपके विघ्न भी खत्म होते जाएंगे। तो शास्त्रों में इस भोलेनाथ भगवान को कैसे भक्तों ने, आसुरों ने क्या किया, रिझा दिया उसको, अपने प्यार में खुश कर दिया, मना लिया उसको, उसको बुद्धू बना दिया। तो ऐसे दो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन दो मुख्य उदाहरण लेते हैं। हाँ, उसका एडवांटेज भी लिया। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं पॉजिटिव वाला। तो पहला पॉजिटिव उदाहरण हम लेते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन था और एक भील, एक शिकारी बहुत ही भूखा था, उसकी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे और उसके सिर पर कर्जा भी था, तो उसको कर्जा भी चुकाना था। तो वो बड़ी आश लेकर के भूखा प्यासा दिन भर जंगल में भटक रहा था। अब उसको वो पता नहीं था कि महाशिवरात्रि का दिन है और जाने अनजाने उससे क्या हो जाता है, उपवास हो जाता है। फिर अब वो शिकार के लिए घात लगा के बैठ जाता है एक पेड़ पे। तो अब उसको ये पता नहीं होता कि ये पेड़ क्या है, बेल का है। अब शिकार की राह वो देख रहा है और बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए वो क्या करता है, उस झाड़ के पत्ते तोड़ रहा है। अब तोड़ते तोड़ते उससे क्या हो जाता है, 108 बेल पत्र नीचे। हाँ, खुश होने के लिए उतने काफ़ी होते हैं 108। तो वो नीचे तो शिवलिंग था और वो डालता जा रहा है पत्ते तोड़ तोड़ के। हाँ, तो शिव बाबा ऊपर से देखते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन है और मेरा ये भोला भगत उपवास भी उसने रखा है और मेरे ऊपर बेलपत्र भी 108 चढ़ाए हैं। तो इस भोलेनाथ की बस भी प्रोसीजर होती है, वो भी बड़ा साइंटिस्ट है। तो उनके गुण, उनकी शक्तियाँ उसको मिलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, वो प्रोसीजर शुरू हो जाती है। तो देखता है सामने एक हिरन आता है, वो उसके लिए तीर निकालता है, लेकिन हिरन उस शिकारी को देख लेता है और बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं मारो, मैं तो गर्भवती हूँ। तो वो जो शिकारी है उसमें अचानक से कहीं से अहिंसा का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसमें उस शिव भगवान से अहिंसा की किरणें, शक्तियाँ उसमें जागरूक हो जाती है और उसको क्या बोलता है, ठीक है, क्षमा कर दिया। दूसरा हिरण आता है, मतलब ऐसे तीन हिरण आते हैं, ऐसी वो स्टोरी है। तो वो हर एक को क्या करता है, किसी को क्षमा करता है, मतलब जीव दान देता है, तो किसी को टाइम देता है कि हाँ ठीक है, आप अपने बच्चों को मिलने आना है, मिल के आना है तो मिल के आओ, तो ऐसे अलग अलग तीन हिरण आते हैं, तो लास्ट का जो हिरण है तीसरा, वो तो बच्चों वाला होता है, वो बोलता है कि मैं अपने बच्चों को मिल के आता, तो इसको भी अपने बच्चों की याद आ जाती है कि मेरे भी तो घर में बच्चे हैं, चलो मैं इसको भी क्या करता हूँ, टाइम देता हूँ। बाद में भगवान की शक्तियाँ उसको मिल गई और प्रैक्टिकली उसने उसके ऊपर क्या कर दिया, जीवन में धारण भी कर ली, तब जाके क्या हो जाता है, वो भोलानाथ उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी वरदान मांगो। तो दिखाया गया है कि वो हिरण को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है, उस शिकारी को भी और उस शिकारी के फैमिली को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो शिव बाबा कितना भोला है, जाने अनजाने में हमसे कुछ पुण्य कर्म हो जाते हैं जिससे हमारे कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं और हम क्या बन जाते हैं, उसके दिल तख्त को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी तख्त प्राप्त करने के बाद एहसान फरामोश बन जाते हैं, हम क्या बन जाते हैं, बेवफा कहीं ना कहीं बन जाते हैं, उसके प्रति वफादार नहीं रहते हैं। तो आगे क्या होता है उसकी भी एक स्टोरी है जो हम सबको पता है, फिर भी रिवाइज करते हैं। भस्मासुर, वो क्या करता है कि शिव बाबा को खुश करने के लिए बड़ा तप करता है, और तप करने के बाद शिव बाबा खुश भी हो जाता है और प्रसन्न होके फिर पूछते हैं, बोलो क्या वरदान चाहिए। तो अब वो तो प्रॉमिस होता है ना कि मांगो, वो भोला ना थे ना, पता होते हुए भी, वहां तक हम पहुंचेंगे अभी, पता होते हुए भी वो क्या करता है, वरदान दे देता है। क्यों? क्योंकि ड्रामा में वो नुंद है, वैसा पार्ट। तो उस भस्मासुर को वरदान चाहिए होता है कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूंगा वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाऊंगा, भस्म हो जाए। तो भोलानाथ उसको सब कुछ जानते हुए भी बच्चे की आश पूरी कर देते, उसको वरदान दे देते। अब ये बच्चा इतना शैतान होता है, वो पहला प्रयोग भोलेनाथ पे ही करना चाहता है। तो उस कहानी में बताया गया है, शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि भोलानाथ भाग रहे हैं अपने आप को छिपाते हुए। फिर अब बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है, फिर श्री विष्णु जी क्या करते हैं, एक युक्ति रचते हैं। वो जानते हैं उस भस्मासुर की कमजोरी क्या है, तो वो क्या करते हैं, उसकी कमजोरी सुंदर मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं और उस भस्मासुर के सामने जाते हैं उसका मन को डाइवर्ट करने के लिए। तो वो उसके सामने जाते हैं तो वो बोलता है कि आप मेरे से शादी करोगे, तो वो बोले हाँ जरूर, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मैं जैसा नृत्य कर रही हूँ वैसा नृत्य करके दिखाना पड़ेगा। तो वो मान जाता है और वो अपने रूप में और अपने नृत्य में उसको भस्मासुर को ऐसा मोह लेती है, और डांस करते करते ऐसी एक स्टेप पर आ जाती है कि दोनों हाथ उस भस्मासुर के अपने सिर पे आ जाए, और उसको पता भी नहीं चलता क्योंकि वो तो उसमें फंसा हुआ है मोहिनी रूप में। तो वो दोनों हाथ अपने सिर पे ऊपर लाता है और अपने आप को ही भस्म कर देता है। तो भगवान भी फिर ऐसी युक्ति रचते हैं, आज की मुरली में भी कड़े महावाक्य है कि इंद्र सभा में भी अगर कोई ऐसी छिपके आ जाता है, बाबा ने कहा होते तो बड़े नाजुक है ऐसे बच्चे, गलती करके आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर आगे लंबे समय तक वो चल नहीं पाते, उनको आखिर अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। तो ये भोलानाथ बाबा कितना भोला है, तो आज बाबा ने लौकिक बाप का उदाहरण देते हुए फिर अपने आप की भी महिमा की है। तो बाबा ने कहा कि लौकिक में जैसे वो भोला बाप होता है, कितनी मेहनत करता है बच्चों के लिए, कमाता है और सब कुछ अपने बच्चों को देखता है, और फिर वो वानप्रस्थी हो जाता है और फिर बोलता है कि मेरा अभी फर्ज अदाई क्या हो गई है, पूरी हो चुकी है, अब मैं चला वानप्रस्थ की ओर। तो बाबा कहते देखो कितना भोला होता है वो बाप लौकिक में, दुनिया में भी उसको कुछ आश नहीं रहती कि बच्चे मुझे प्यार करें, बच्चों का प्यार तो माँ से ही रहता है। क्यों? क्योंकि माँ डांटती नहीं है, मारती नहीं है, अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खिलाती रहती है। तो कई बच्चों को बाप ही ज़्यादा प्रिय नहीं होता, माँ ही प्रिय होती। कई जगहों पे उल्टा भी होता है, माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है तो बाप बाप के सिर पे ही बच्चे बैठ जाते हैं। मेरा अनुभव भी ऐसे ही है, मम्मी स्ट्रिक्ट थी, पिताजी हमारे सॉफ्ट थे, मतलब है। क्योंकि होता है, हर फैमिली का अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। वो पिताजी घर में आते ही सब चुप हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है, शमशान बन जाता है, टीवी बंद हो जाता है अपने आप। किताबें खुल जाती है, मतलब बिल्कुल एक वातावरण जो है गंभीर बन जाता है। और कई जगह पिता घर में आते ही बच्चे बड़ों रिलीफ मिल जाता है, देखो ना मम्मी ने मुझे आज ऐसे बोला वैसे बोला, मम्मी की कंप्लेंट शुरू हो जाती। तो कई बच्चे मम्मी के प्यारे होते हैं तो कई पप्पा के प्यारे होते हैं। तो आज हमें पिता का प्यार मिल रहा है तो बाबा बोल रहे कि देखो वो तो हद का भोला है, मैं तो बेहद का भोला हूँ, आपको मैं क्या क्या नहीं देता हूँ। तो बाबा हमारे लिए पतित तन में, पतित दुनिया में आते हैं और हमें क्या करते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए कितना साधारण है, बाबा ने कहा कि देखो ये बाप कोई तिलक नहीं लगाता है, कोई दुपट्टा, कोई शाइनिंग नहीं है यहाँ पे, कोई दिखावा नहीं लगाते। दुपट्टे तो बच्चों को दे दिए ना, बच्चे पहन के बैठे। तो ये है भोलानाथ बाबा। तो भोलानाथ बाबा को हमने, हमारे पास कई अनुभव है जीवन में, हमने कई बार उसका अनुभव किया है। तो जब मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता था, ओरल एग्ज़ाम होता था ज़्यादातर इंग्लिश का, तो क्या करता था, बहुत बाबा को याद करता कि बाबा कुछ भी करके आज मेरा नंबर ना आए तो आज मेरा एग्ज़ाम ना हो, कल हो, पाँच दिन के बाद हो, थोड़ा समय दो बाबा मुझे। तो मैं सुबह से अमृत वेला से लग जाता था और मम्मी को भी पता चल जाता था कि आज इसका जरूर कुछ है स्कूल में। मम्मी बोलती थी हाँ बस हो गया अभी सो जाना। लेकिन बाबा बाबा करते हुए जैसे ही मेरा नंबर आने वाला है, मानो मेरा सीरियल नंबर 35 है, 34 तक मैम आ गई है, 34 के एग्ज़ाम ले रही है, और देखो बाबा कैसी मदद कर देता है। मैडम पीछे जो बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं उन बच्चों को देखते हैं, अच्छा चलो आपका नंबर लास्ट में है इसलिए आप मस्ती कर रहे हो ना, चलो अभी ये इधर ही स्टॉप करती हूँ, अब मैं उल्टा शुरू करूँगी। स्कूल में मेरे क्लास में 70 स्टूडेंट थे, तुम 70 नंबर किसका है वो आ गया हो चलो, और मेरी एग्ज़ाम कब आएगी, लास्ट में आएंगे। मतलब इतना भोलेनाथ बाबा को प्रैक्टिकल में यूज किया है। तो भोलेनाथ, हाँ सबसे बड़ा टीचर, सर्वोत्तम टीचर मदद कर रहा है, तो इससे अच्छे लक्षण क्या हो सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल में ऐसे बाबा को यूज करना है, लेकिन ये अनुभव कहीं सुनाने नहीं है, क्योंकि आज बाबा ने कहा है कि डिससर्विस भी नहीं करनी है। ये जो अपने ही सीमित रखने हैं, बारिश वाले अनुभव या जो पर्सनल अनुभव है ना, ऐसे वाले जो स्वार्थी वाले हैं, इसको अपने पास ही रखना है। हाँ भोलानाथ फर्स्ट, तो वही प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है, मैंने कैसे किया आप भी करो। अब अगला जो हमारा प्रयोग है, अभी देखो आपने एम भी देखा, क्या एम था, भोलानाथ। फिर उसमें मटेरियल क्या था, उसमें बाबा चाहिए और बच्चा चाहिए, दो ही चाहिए, थ्योरी हो गई। फिर प्रोसीजर अमृत वेला से लगना होता है कि बाबा आज मेरी एग्जाम है। बाबा मुझे देखो, मैंने अमृत वेला किया है, मैंने मुरली क्लास किया है, अभी मैं हूँ क्राइटेरिया में, आपको मदद तो करनी होगी, उसको बांध दो। हाँ प्रोसीजर में भी ले लिया बाबा को। और फिर ऑब्जर्वेशन, अभी बाबा आप मेरे साथ हो, देखो नंबर आ रहा है, टीचर भी सामने है, उसके हाथ में छड़ी भी है, बाबा है ना, क्योंकि देखो वो तो हद का टीचर है, हम तो बेहद के टीचर से मदद ले रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस उसके सामने। तो प्रोसीजर भी हो गई और लास्ट में रिजल्ट में मैंने क्या पाया कि मुझे उस भोलेनाथ की मदद आखिर मिल ही गई। काम मेरा, हाँ, एग्जाम से भी मैं फ्री हो गया। हाँ तो दी है ना, तो डिग्री कॉलेज में जब लास्ट मैंने प्रैक्टिकल दिया है उसका भी अनुभव मेरे पास है। ठीक है, वो कल बताएंगे। अभी अगली प्रोसीजर है कौन सी, अगला जो हमारा प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट, वो है बाबा क्या है, धर्मराज। धर्मराज बाबा क्या करता है, अचानक से क्या हो गए, साइड अभी चेंज हो गई है, सीट बाबा की चेंज हो गई है। तो धर्मराज मना, हमारे मन में हमेशा डर होना चाहिए। अगर हमारे पास डर है तो हमारे से कुकर्म नहीं होंगे, विकर्म नहीं होंगे। जैसे शास्त्रों में भक्ति में दिखाया गया है कि क्या हुआ, उन लोगों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, उन शंकराचार्यों में ऐसे कुछ डर उनको दिखाए, रो रो नौक, कुंभी पार्टनर, कि कैसे जो अगर आपने ये कर्म किया तो आपको ये सजा मिलेगी। तो मन में एक डर होना चाहिए कि अगर मैंने ये किया तो मुझे क्या सजा मिलने वाली। आज बाबा ने कहा है कि जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, कोठरी में कुछ किताबें रख देते हैं और किसी को आके सुनाया, कोई आया सुना दिया और उनकी इनकम हो जाती है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन बाबा ने कहा ये यथार्थ इनकम नहीं है। लेकिन मैं अगर योगी बनूं, प्रयोगी बनूं, तो ये क्या सोर्स ऑफ हेल्थ है। मेरी काया ही बदल जाएगी, वर्तमान में भी बदल जाएगी और भविष्य में तो मिलनी ही है। तो उसके द्वारा प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, बाबा ने कहा कि प्रयोग करना है और हमें उस राजाई को प्राप्त करना है। तो धर्मराज के लिए बाबा ने आज और एक शब्द यूज़ किया है मुरली में, मार्शल लॉ। ऐसा समय आएगा कि उसके ऊपर मार्शल लॉ, जैसे कोर्ट मार्शल, मतलब उनका कोर्ट ही अलग होता है मिलिट्री में, उनका कोर्ट ही, वो तुरंत अगर कोई ट्रेटर बनता है, कोई शत्रु से मिल जाता है, तो वो इधर वाली कोर्ट में नहीं आता, उनका कोर्ट अलग ही होता है, वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। उसको क्या सजा देनी है वो चीफ, उनके जो चीफ है मिलिट्री के, वो तय करते हैं और उनको तुरंत सजा। तो बाबा ने कहा अभी वो समय आ रहा है कि तुरंत, और बाबा ने कहा अभी आपको देखने को मिलेगा, वो जो समय है मार्शल लॉ का वो समय नज़दीक है। और बाबा ने कहा यहाँ कोई छिप नहीं सकता इस इंद्र सभा में, वो पता पड़ ही जाएगा और वो यहाँ पे रुक भी नहीं सकते। बाबा ने कहा कि धर्मराज, बाबा कहते कि मैं सजा नहीं देता हूँ, धर्मराज द्वारा, बाबा ने कहा कि धर्मराज सजा दिलवाते हैं, खुद नहीं देते, उसके कर्मों के अनुसार उसको सजा मिल जाती है। तो हो गया धर्मराज का रूप। कौन कौन सी वो पॉइंट है, हाँ उस डर वाली पॉइंट कौन कौन सी है, हाँ कि बाबा मुझे देख रहा है, हाँ डर होना चाहिए अंदर में। इसका कल एक दो दिन पहले वीडियो मेरे पास आया था तो बच्चों में, छोटे बच्चों में कैसे अपनी मम्मी पापा का डर होता है, तो उससे वो कैसे गाड़ी एक्यूरेट चलती है और वो बच्चे कैसे सेफ होते हैं। तो दो दिन पहले एक वीडियो आया था, उस स्कूल में है और स्कूल में उसका टीचर कोई होगा बीके, उन्होंने सुनाया होगा बच्चों को कि सतयुग कितना सुंदर होता है, वहाँ सुंदर सुंदर महल होते हैं, सुंदर सुंदर पंछी होते हैं, उन्होंने बताया होगा। तो फिर लास्ट में बच्चों को पूछा तो बच्चों कौन कौन आएगा सतयुग में, तो एक बच्ची बोलती मैं तो नहीं आऊँगी वो बोलता है क्यों बेटा क्यों नहीं आओगे क्योंकि वो बोलती है मेरी मम्मी ने कहा है स्कूल से सीधा घर आने का तो सीधा घर जाना है हमें, बीच में इधर उधर साइड सीन में फंसना नहीं है। जैसे ही हम मुरली क्लास में पहुंचे, मुरली हुआ, वहीं से माया साइड सीन के रूप में हमारे साथ ही होती है। तो साइड सीन डिपार्टमेंट हमारे लिए नहीं है, नए नए लोगों के लिए उस डिपार्टमेंट से काम ही नहीं रखो अपना साइड सीन नए लोगों के लिए होता है, हमें क्या करना है सीधा घर जाना है। तो फिर क्या नहीं होगा, हमें धर्मराज के डंडे से क्या नहीं होगा, आहत नहीं होना पड़ेगा। तो धर्मराज को याद रखना है। फिर अभी हमारा अगला प्रयोग कौन सा है, सोर्स ऑफ इनकम, तो योग से हमारी इनकम कैसे होगी? ज्ञान से हमारी इनकम होती है, ये मिलता है, धन मिलता है, लेकिन योग से हमारी स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ ठीक होता है। तो योग से स्वास्थ्य को ठीक करना है, तो इसके प्रयोग तो हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन तो थोड़ा सा यही है कि उसकी विधि, उसकी प्रोसीजर न दिखाई दे लोगों को सार रूप में, हमारा त्याग नहीं दिखाई दे, हमारा भाग्य, हमारी चमकती हुई काया थोड़ा जल्दी दिखाई दे। लोग हमें बेचारा न कहे, लोग यह कहे कि ये तो सतयुगी आत्मा है, खाते पीते घर का है। हमारी पर्सनैलिटी उनको थोड़ा जल्दी दिखाई दे, हमारा वही सूखा हुआ चेहरा नहीं दिखाओ। हाँ, अंदर की बीमारी देखो, अभी रात में ही ब्रह्मा भोजन था, तो प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि हर बार थोड़ी बेचैनी होती है कि कल बोलना है, कल टॉपिक है, लेकिन रात को पेट भरा हुआ था तो अच्छे से नींद आई और बेचैनी नहीं हुई। और कोई बेचैनी नहीं हुई, स्थिरता थी, और आराम से उठा और फिर बाबा को बता दिया, बाबा अब आप ही देख लो, आप ही संभाल लो। तो देखो, भूखे पेट भजन नहीं होता है, इसलिए क्या करो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पेट को अच्छे से भरा हुआ रखो। तो मुरली में बाबा ने आज कहा है कि एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, और सतयुग के कई बातें बाबा ने आज बताई, और कई बातों को आज बाबा ने उड़ा दिया, सतयुग की कई बातों को बाबा ने आज उड़ा दिया है। तो एक तो किसी ने पूछा बाबा को भाषा, तो बाबा ने कहा उसके उसमें नहीं जाओ, जो देवताओं की भाषा होंगी ना वो होंगी, वो देखेंगे वहाँ जाने के बाद। फिर किसी ने फिर और बातें पूछी बाबा से 84 जन्मों की बात, बाबा ने कहा उसमें नहीं जाओ, आप छोड़ो उसको। कई बातों को बाबा ने आज स्किप किया है मुरली में, कि जो बातें बाबा ने हमको सिखाई हुई है, और मुख्य बात बाबा ने फोकस करने के लिए कहा योग के ऊपर, कैसे राजयोगी बनना है और कैसे आपको विघ्नों से मुक्ति पानी है, उसकी विधि बाबा ने आज बताई है। तो फिर आज हम देखेंगे अगली विधि, ये विधि समझ में आई, योग द्वारा कैसे हेल्थ प्राप्त होते हैं। तो अभी अगली विधि जो है कि बाबा ने खास कहा है, सतयुग के बारे में, सतयुग के और बातों को बाबा ने उड़ा दिया, और एक बात पर बाबा ने फोकस किया, बाबा ने कि गर्भ महल। तो इस शब्द को ढूंढते ढूंढते मैं यज्ञ इतिहास में गया, जब मम्मा अव्यक्त हुई, मम्मा के सारे संदेश पढ़ लिए, दीदी का संदेश पढ़ लिया, दादी का संदेश पढ़ लिया, और अभी रिसेंटली हमने गुलजार दादी, जानकी दादी के भी संदेश देखे। तो गर्भ महल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिली, और अगर आपको सार रूप में पढ़ना है तो एडवांस पार्टी स्पार्क का छोटा बुक है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें सार रूप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आजकल दुनिया में गर्भ संस्कार होते हैं, उसके लिए भी योगा फिजिकल उनको सिखाया जाता है, और कैसे भगवान को याद करना है और कैसे उस बच्चे के ऊपर संस्कार करने हैं। शास्त्रों में दो उदाहरण मुख्य है, एक तो है अष्टावक्र का है और दूसरा अभिमन्यु का है। अष्टवक्र का हम पॉजिटिवली देखेंगे, और गर्भ संस्कार में वो अभिमन्यु का, वो योग वो माँ पूरा कर नहीं पाई, बीच में सो गई, तो क्या हालत हो गई उसकी, बच्चे की, वो भी हमने देखा। तो गर्भ के बारे में एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि सारी सृष्टि को आप क्या कर लो, गर्भ में संभालो। वो मिली नहीं मुरली मुझे, है एक अभी कुछ, हाँ ऐसे है, गर्भ शब्द है। तो विश्व की आत्मा मतलब आप पालक बन जाओ, उनको माँ बन के उनकी क्या करो, पालना करो। तो वो मुरली मिली नहीं, नहीं तो मैं डेड बताता। और फिर हाँ, फिर 2008 का एक संदेश मिला जिसमें गुलजार दादी द्वारा संदेश है, बड़ी दादी बाबा से चिट चैट कर रही है, तो प्रकाशमणि दादी हंस रही थी, तो बाबा ने पूछा क्या हुआ क्यों मुस्कुरा रही हो, तो दादी ने कहा कि देखो ना बाबा कि शास्त्रों में जो गायन है श्री कृष्ण का कि उसका जेल के अंदर जन्म हुआ, तो हम भी गर्भ में हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ देखो यहाँ तो आपको कोई गंदगी का या कुछ दुख दर्द का एहसास नहीं है, पर्दे के अंदर हो गर्भ में, लेकिन आप जैसे कि पर्दे के अंदर हो। तो दादी ने कहा हाँ कोई वो वाली फीलिंग तो नहीं है, लेकिन कितना बाबा ने हमें ये गर्भ महल की अनुभूति बाबा यहाँ करा रहा है। तो बाबा ने कहा कि हाँ भले देवताई शरीर नहीं है, लेकिन आप हो तो देवता देवात्मा। तो वहाँ पे गर्भ महल का जिक्र बाबा ने किया हुआ है। फिर दीदी के साथ बाप दादा अव्यक्त बाप दादा बात कर रहे हैं, और अव्यक्त बाप दादा बड़ी दादी को पूछ रहे हैं कि आपकी सखी कहाँ है। तो दादी को बाबा ने जवाब दिया कि आपकी सखी तो अभी गर्भ में है। तो इन दिनों में हमारे जो बड़े भ्राता होते थे तो वो बाबा से प्रश्न पूछते थे कि बाबा आपको तो पता है ये शरीर छोड़ने वाले थे, तो फिर आपने योग कराया 3 दिन 4 दिन लगातार योग भट्टी कराई, तो ये क्यों? तो बाबा ने उस समय बताया था उनको कि ये जो आपने योग किया, उस योग का राज बाबा ने बताया कि उनका उनका जो गर्भ बन रहा है वो योग उधर ट्रांसफर किया गया था। मतलब योग से हमारी काया कैसे बनेगी, सिर्फ वर्तमान में तो बनेगी लेकिन भविष्य में कैसी बनेगी उसकी भी रूपरेखा बाबा ने बता के रखी हुई है कि हम अभी योग करते हैं तो केवल वर्तमान में ही हमें उसके फायदे या पिछला जो विकर्म किए वो भस्म तो होंगे ही, योग से वर्तमान में भी फायदे होंगे और भविष्य में भी हमें वो कैसे सुख की अनुभूति कराएंगे वो भी बाबा ने हमें बताया हुआ है। तो अभी अगला पॉइंट कौन सा है? चार हो गए ना, चार हो गए। पहला भोलेनाथ बाबा, दूसरा धर्मराज बाबा, फिर योग के द्वारा कैसे स्वास्थ्य होगा, और चौथा भी जो हुआ एक, हाँ यही था। चलो इसको तीसरा पकड़ लेते। तो अभी अगला जो है, बाबा ने समय के बारे में बाबा ने कहा है कि समय का महत्व धारणा के लिए पहला जो पॉइंट है, बाबा ने कहा कि समय समय ऐसा है गफलत करने का नहीं है। अभी क्या है, हमें क्या करना है, कर्म का जो हिसाब किताब है वो चुक्त करना है। समय के बारे में आज की मुरली में बाबा ने हमें बोला है कि समय को देखते हुए, तो हमें इसके ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। एम आज का प्रयोग है हमारा समय, और बैठ जाओ घड़ी जो सबसे बड़ी घड़ी है कि मैं समय हूँ, कि अगर हम समय को ध्यान में रखेंगे, समय के साथ हम न्याय करेंगे, अगर हम समय को महत्व देंगे तो समय भी हमें क्या करेगा, महत्व देगा, समय भी हमें क्या करेगा, समय पर साथ देगा। और फिर क्या होगा, साथ दो समय साथ तो समय भी हमारा सफल हो जाएगा। देखो समय ने साथ दे दी। तो अगला जो प्रयोग है, जो बाबा ने आज एक भविष्यवाणी की मुरली में, हाँ तो बाबा ने कहा कि लाखों की तादाद में क्या बनेंगे, लास्ट की लाइन मुरली की, लाखों की तादाद में क्या बनेंगे, हाँ लाखों लाखों की तादाद में बाबा के बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। उस समय तो नहीं थे, कम थे, बाबा के सामने गिने चुने थे जब ये साकार मुरली चली होंगी, लेकिन आज देखो एक साथ लाखों की तादाद में हम क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र घुमाते हैं। तो ये सुदर्शन चक्र का अभ्यास भी हम करते ही हैं दिन भर में, 1 मिनट में भी कर सकते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास, दिन में सुबह एक करेंगे दोपहर में एक करेंगे, ऐसा पूरा मिला के भी 5 स्वरूपों का अभ्यास सेट कर सकते हैं। शाम को बैठेंगे तो हाँ भक्तों को सकाश दे सकते हैं। ऐसे 5 श्लोकों का अभ्यास टिक 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 1 मिनट में भी कर सकते हैं और पूरा दिन भर में भी कर सकते हैं, या एक एक स्वरूप को एक एक दिन भी ले सकते हैं। और उससे क्या होगा फिर, ये स्वदर्शन चक्र घुमाने से क्या होगा? हाँ, हम भी उस सतयुग में जाने के माया के चक्र खत्म हो जाएंगे। हाँ, सृष्टि को भी सुख मिलता है, व्यर्थ और बच जाएंगे, खुद को भी और सृष्टि को भी आप क्या बना देंगे, पावन बना देंगे। फिर अगला प्रयोग है स्वमान के ऊपर आते हैं अभी। तो स्वमान में बाबा ने कहा कि स्वमान में रहो तो क्या नहीं आएगा, देह का अभिमान नहीं आएगा। देह के अभिमान की और बातें तो बहुत हमें पता है, लेकिन अभी समय को देखते हुए मुरली में जो बाबा ने कहा कि आप बाप से तो प्यार करते हो लेकिन माया आपसे बहुत प्यार करती है, बाबा ने आज बता दिया माया भी आपसे बहुत प्यार करती है। वो चाहती नहीं है कि आप बाप के बनो, बाप को याद करो। हाँ, तो वो क्या चाहती है, उसकी चाहना है कि आप देह अभिमानी बने रहो, देह के भान में रहो, मेरे से प्यार करते रहो, मुझे देखते रहो, मेरी गोद से आप बाबा की गोद में नहीं जाओ, वो चाहते ही नहीं है। आज 2-3 लाइन बाबा ने ऐसी यूज की है मुरली में, पहले पहले भी है और लास्ट लास्ट में ही, कि वो क्या चाहती है, वो चाहती ही नहीं कि आप मेरे से दूर हो जाओ, बिछुड़ जाओ, नहीं। पूरे मुरली में है, लेकिन देह अभिमान की पॉइंट वरदान में है। स्वमान में रहो तो स्व के रूप में, स्व की स्थिति में हम स्थित रहेंगे, तो वो शरीर का जो रूप है, शरीर जो है, शरीर की जो स्थिति है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। तो देह अभिमान में नहीं आएंगे, मतलब उसका कभी अपमान नहीं होगा, वो कभी भान में नहीं आएगा। तो भान कितने प्रकार के हैं, एक तो पद पोजीशन का भान है, रंग रूप का भान है, और कौन कौन से भान में आते रहते हैं, स्वमान को छोड़कर कौन कौन से मान में आ जाते हैं? हाँ, फीलिंग में आना। फिर अगला जो है योग, रियल गोल्ड बनने का स्लोगन में बाबा ने कहा है कि रियल गोल्ड कौन बनेगा, जो अपने आप को क्या कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे, समय स्थान अनुसार क्या कर लेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे, वही क्या बन जाएंगे, रियल गोल्ड बन जाएंगे। तो अब रियल गोल्ड वाला प्रयोग तो हमने कई बार किया हुआ है, बाबा कौन था, जौहरी था, और मैं कौन हूँ, गोल्ड हूँ, रियल गोल्ड हूँ। तो बाबा ने मुझे क्या किया है, मिट्टी से निकाला है, अब मुझे क्या कर रहा है बाबा, भट्टी में डाल रहा है, और बाबा ने क्या किया है, आग लगा रखी है ना। तो अभी उस हाँ, तो बाबा ने मुझे कहाँ डाला हुआ है, उस भट्टी में, बर्तन में डाला हुआ है, थोड़ी गर्मी अभी सहन कर लो। तो गर्मी कौन कौन सी होती है, गर्मी भी 2 प्रकार की होती है। वो जो लैंप होते हैं ना, जो घर में मिट्टी के तेल का लैंप जलाते हैं, उससे क्या हो जाता है, पूरी रात भर रखो ना तो नाक भी काला हो जाता है। लेकिन जो लैब में होता है ना स्पिरिट वाला, उससे धुआं नहीं निकलता, बर्तन काला नहीं होता, तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा ना। तो फिर ये जो दिए होते हैं, आग होती है, वैरायटी प्रकार की होती है। लेकिन अभी हम क्या हो जाते हैं, विकारों की आग में जलते 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 काले कोयले बन पड़े हैं। तो बाबा के पास जो आग है, वो हमें वो जो कालापन है वो निकालने वाली आग है, पवित्रता की आग है, ज्ञान की आग है, योग की आग है, इसमें बाबा हमें क्या कर रहे हैं, इस भट्टी में डाला हुआ है। और बाबा क्या कर रहा है, हवा लगा रहा है उसको, हवा भी एक हाथ से बाबा क्या कर रहा है, उस पंखे को भी घुमा रहा है, और वो आग तेज होती जा रही है। और अब वो जो सोना है उसने अपना रूप भी चेंज कर लिया है, अब वो लिक्विड रूप में, लिक्विड फॉर्म में आ गया है, उसका रंग भी चेंज हो गया है, लाल सुनहरा वो चमक रहा है, उसमें की खाद धुआं बन के चली गई है, और वो क्या हो रहा है, रियल गोल्ड चमक रहा है। अब बाबा ने उस बर्तन को उठा लिया और पानी में डाल दिया, आवाज आई सर सर सर, बहुत सुंदर सी आवाज आती है, हाँ फुर्र आवाज आती है। अब उस सुनार के बर्तन में क्या डाला हुआ है, रिठा डाला हुआ है। अब बाबा क्या कर रहा है, उस सोने की गोली को चमका रहा है ब्रश से। चमकाने की आवश्यकता नहीं, वो तो चमक गया है। अब बाबा उसको फाइनल टच दे रहा है। तो दिन भर में या चलो नुमा शाम का योग करते समय ये जो प्रोसीजर हमने देखी कि बाबा कौन है, सुनार है, और मैं कौन हूँ, रियल गोल्ड है। तो मुझ आत्मा के ऊपर ये सारी प्रोसीजर बाबा कर रहा है, ऐसे योग करेंगे और क्या बन जाएंगे, रियल गोल्ड। फिर परीक्षा तो होंगी 7:30 बजे के बाद, तैयार रहना एग्ज़ाम देने के लिए। कोई आएगा, हाँ मोल्ड हो रहे हैं, गोल्ड है। हाँ तो ये सब बातें होंगी। तो प्रयोग, प्रयोगशाला में फाइनल रिजल्ट क्या आता है आपका, वो प्रयोग सक्सेसफुल रहा और वो उतने समय में पूरा हुआ, समय की भी पाबंदी होती है, कितना सक्सेसफुल रहा उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। और जिसका प्रयोग पूरा होता ही नहीं उसको टाइम लगता है, फिर वो लैब असिस्टेंट चिल्लाता है, ए जल्दी करो, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, ओम शांति।